भी फिलोसॉफिकली फिक्स्ड इन द बेसिक्स। तत्व को अच्छी तरह जानना, वो पहले से बोला हमने, वो पहला पॉइंट हो गया। अभी दूसरा पॉइंट, पहला तो तत्व की पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इंटरपर्सनल डीलिंग, हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं इंटरपर्सनल। तो जो भक्ति वृक्ष लीडर बनते हैं उनको जिस तरह एक माता अपने बच्चों को संभालती है, इस तरह अपने ग्रुप में रहने वाले लोगों को एक फॉलोअप रखना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए व्यक्ति में। तो ख्याल रखना, जैसे भागवत में पृथु महाराज के बारे में एक वर्णन आता है, माता और पिता जैसे बच्चे को जानते हैं इस तरह वो जानते थे अपने प्रजा को अच्छी तरह। और उसको कैरिंग बोला गया है। देखिए कैरिंग का मतलब है, आप तो भक्ति वृक्ष में आने वाले लोगों को प्रचार तो करते हो भगवद गीता भागवत से, लेकिन कैरिंग का मतलब क्या है, उनका घर वाले कैसे हैं, उनके माता पिता कैसे हैं, अगर उनको तबीयत बिगड़ गया तो तबीयत कैसा है, अभी किसी का नौकरी छूट गया तो क्या नया नौकरी मिला कि नहीं उनका, इन चीज़ों के बारे में भी ख्याल रखना। कभी कभी अगर कोई बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे हमारे घर में हमारी दादी जी है, बहुत उनका तबीयत बहुत ख़राब है, अभी कभी भी वो मर सकती है, अगर कोई मर गए किसी घर में तो सब लोग साथ में जाकर कीर्तन करते हैं उनके घर में। इस तरह कैरिंग का मतलब है आप उनके भक्तिमय जीवन का ही नहीं लेकिन व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी ख्याल रखना, वो कैरिंग है। और दूसरा है अप्रिशिएटिंग। और अगर कोई वो आइडियाज़ देते हैं, वो आइडिया को सुनने के लिए और उनको प्रशंसा करना, और उनको सिखाते समय ऐसे सिखाना जिससे वो प्रेम से भक्ति को स्वीकार सकते हैं। देखिए कभी कभी हम भक्ति मार्ग सिखाते समय हम लोगों को बोलते हैं, देखो अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना तो काफ़ी छोड़ना पड़ेगा, आपको चाय भी छोड़ना पड़ेगा, आपको सब मूवी देखना सब बंद, आप टेलीविजन को बेच दो वो भी बंद, ये छोड़ना पड़ेगा। तो लोग कभी कभी क्या करते हैं, ये वो सब छोड़ने के बदले आपको ही छोड़ देते हैं, वो बोलेंगे अरे बड़ी ये छोड़ो वो छोड़ो बोलते हैं, इनको ही छोड़ प्रचारक को ही छोड़ देते हैं, वो बंद कर देते हैं कार्यक्रम में आना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, छोड़ो बोलने के पहले जोड़ो बोलना चाहिए, छोड़ने के बदले क्या बोलना चाहिए, भगवान से जोड़ो पहले। अगर कोई भगवान से जुड़ गया तो बाकी गलत चीज़ों को छोड़ना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान से जुड़ने से जूस मिलता है, एक प्रेम मिलता है, तो उससे वो प्रेम मिलने के बाद गलत चीज़ों को छोड़ना बहुत आसान है। अभी इंटरपर्सनल के बारे में बोला, अभी पर्सनल उसका मतलब है हमें सेवा भाव होना चाहिए। अभी एक ड्रामा दिखाएंगे आपको, आप देखिए एक पति पत्नी ऐसे एक ड्रामा दिखाएंगे, आप ड्रामा देखने के बाद आपको ही पूछा जाएगा कि आप ड्रामा से क्या समझा आपने।
आलू गोभी और गरम गरम पूड़ियां और उसके साथ गरम गरम गाजर का हलवा, अरे वाह मजा आ गया, मन तृप्त हो गया, इसे कहते हैं ग्रस्त जीवन के सुख, वाह। अरे सुनती हो चैतन्य की माँ, इधर तो आओ।
आई आई प्रभु जी, मैं जरा आपके ऑफिस के लिए घी के लड्डू बना रही थी।
क्या घी के लड्डू, अरे मैं कहीं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा, जरा चूटी तो काटो।
क्यों प्रभु जी।
अरे काटो काटो, आ नहीं ये स्वप्न नहीं है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज तो रविवार भी नहीं है और आज घर में इतने स्वादिष्ट पकवान, पूरा फीस्ट आज घर में ही मिल रहा है, दाल में कुछ काला लग रहा है।
अरे नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
नहीं नहीं कुछ तो बात है, बताओ बताओ।
हाँ प्रभु जी, मैं आपसे कुछ दिनों से कोई बात कहना चाह रही थी।
हाँ हाँ।
क्या आपने रमा का सेंट्रो कार देखा है?
हाँ।
वो हर संडे फीस्ट में अपने सेंट्रोस कार से मंदिर आती है और हम हमारे छोटे से टू व्हीलर पे जाते हैं, कितना कष्ट होता है गर्मी और बरसात, कितनी तकलीफ होती है प्रभु जी।
आज रमा अगर सेंट्रो कार में आ रही है तो उस परिवार की जरूरत है, आज रमा के तीन तीन बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, तो उन पांच लोगों के लिए सेंट्रो कार बिल्कुल उचित साधन है राधा गोपीनाथ के दर्शन करने के लिए। और हम और हमारा परिवार, मैं, तुम और चुटचुट, हम तीन लोग हैं, और हम तीन लोगों के लिए हमारा स्कूटर बहुत उचित साधन है जो हमें हर रविवार को और हफ्ते में भी कई बार राधा गोपीनाथ के दर्शन करवाने तो लेके जाता है।
हाँ ठीक है प्रभु जी, पर क्या आपने शीला का बंगला देखा है? क्या हाँ। बंगला है उसका, चार चार बड़े भव्य बेडरूम और इतना विशाल ड्राइंग रूम। वो वहाँ सभी वैष्णवों की कितनी अच्छी सी सेवा कर सकती है। और हम, हमारा छोटा सा 1 BHK, यहाँ हम ठीक ढंग से वैष्णवों की सेवा भी नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है भगवान यहाँ प्रसन्न रह सकते हैं?
प्रिय, तुम्हारा बहुत उचित विचार है कि तुम वैष्णवों की बहुत अच्छे से सेवा करना चाहती हो, लेकिन माँ लक्ष्मी जब भी हमारे ऊपर कृपा करेंगी, तुम्हारे बड़े घर के विचार के बारे में हम जरूर विचार करेंगे।
ठीक है प्रभु जी, पर क्या आपने शीला का ऑल्टर देखा है? 6x6 का इतना बड़ा ऑल्टर, और हमारा ऑल्टर 2x2 का छोटा सा ऑल्टर, और वो भी लकड़ी का।
अरे भगवान, बड़ा घर बड़ा ऑल्टर, हमारा छोटा घर है तो हमारा छोटा ऑल्टर है।
और मार्बल का क्या प्रभु जी?
तुम्हारे मार्बल की इच्छा बहुत उचित है। आने वाली दिवाली पे जब भी मुझे बोनस मिलेगा, मैं तुम्हारे मार्बल के ऑल्टर की इच्छा जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, भगवान जो है वो भावग्रही हैं, वो हमारे भाव, प्रेम और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। और एक बात और बहुत जरूरी है, अगर तुम अपने से अमीर लोगों की तरफ देखोगे तो पूरा जीवन, हमारा पूरा जीवन जो है वो तनावग्रस्त रहेगा।
ठीक है प्रभु जी,
तो चलो आओ इसी बात के ऊपर हम ऑफिस चलते चलते राधा गोपीनाथ जी का दर्शन करते करते चलते हैं।
जैसी आपकी इच्छा प्रभु जी।
बता सकते हैं,
ईर्ष्या कभी करना नहीं चाहिए और समाधानी वृत्ति हमेशा रखना चाहिए।
लेकिन ये माता तो पूछ रही थी बड़ा आल्टर चाहिए भगवान की सेवा के लिए, बड़ा हॉल चाहिए और प्रचार काम करे।
सेवा कहीं भी कैसे भी करते रहना चाहिए। सेवा ढूंढने से मिलती है, मांगने से नहीं मिलती।
अच्छा अच्छा
जी, ठेविले अनंते तैसे चिरावे चित्ती असुद्यावे समाधान।
इसका मतलब क्या बोलिए?
भगवान ने जैसे रखा वैसा ही रहना चाहिए, चित्त में हमेशा समाधान होना चाहिए।
बहुत हरी बोल। अच्छा एक श्लोक कोट किया माता ने। देखिए, इस दुनिया में हम लोग अपने अपने प्रारब्ध कर्म को लेकर घूम रहे हैं सब लोग। किसको, जैसे हमने सुना जिसको जितने जिसने जितना जमा कराया उतना ही वो पाता, ऐसे एक कोट सुना हमने है ना। भगवान के दरबार में सबके काता है, और जो हमने जमा किया है पहले उसके अनुसार हमें प्राप्त होता है। तो ये भक्ति मूवमेंट में जब हम जुड़ते हैं, हमारे संस्था में पढ़े के लोग हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, अंगूठा छाप भी हैं। हमारे संस्था में बहुत राइस धनी लोग भी हैं, सब गरीब से गरीब लोग भी हैं। हमारे संस्था में बहुत ऊंचे कुल में जाने में लोग भी हैं, और जो ट्राइबल लोग भी भक्त बन रहे हैं, ऐसे भागवत में भी बताया गया है। तो शरीर जो है एक पोशाक है, कपड़ा है बस। हमें आत्मा जो है, जैसे शबरी ने एक फल देकर भगवान को प्राप्त किया, जैसे रुक्मिणी ने एक तुलसी दल को देकर भगवान कृष्ण को बहुत आसानी से आकर्षित किया उन्होंने। तो इस तरह हमें ये बात जानना चाहिए कि हम, ये स्त्री जो बता रही थी ड्रामा में हमने जो देखा, तो उनका एटीट्यूड क्या था? हालांकि वो बोल रही है भगवान की सेवा के लिए चाहिए, लेकिन गहराई से देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि वो सिर्फ एक बहाना है। लेकिन इच्छा होता है थोड़ा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, और ये भौतिक जीवन में दूसरों को दिखाने के लिए भी इच्छा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्रियों के अंदर इस तरह का इच्छा होता है, पुरुषों के अंदर भी हो सकता है। कुछ समय के बाद ये लोग आएंगे वापस, बुलाएंगे ड्रामा, तभी आप कुछ समय के बाद आप सुनेंगे। तो ये एक गुण दिखाया गया है, ईर्ष्या भावना। लेकिन इस तरह पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जब हम बोलते हैं, हमारे अंदर सेवा भावना होना चाहिए, पहली पॉइंट बोला गया है। इधर हमें मानना चाहिए कि हम सब वैष्णवों के सेवक हैं। अगर आप भक्ति से लीडर भी हो लीडर भी, हालांकि सब लोग आपको प्रभु बुलाएंगे, माता बुलाएंगे, लेकिन आपको जानना चाहिए कि हम उनके सेवक हैं। कैसे अगर आप, जैसे मैं आप लोगों के ऊपर बैठा हूँ इधर ऊंचे आसन में, मैं कैसे आपका सेवक हो सकता हूँ, ये प्रश्न हो सकता है। एक्चुअली ये सेवक पहले हम क्या करना चाहिए, झाड़ू पोंछा मारना, बर्तन की सफाई करना, इस तरह के सेवाओं को करते समय हमें जान में, हमें समझ में आता है कि मैं एक सेवक हूँ, है ना, बहुत आसान। जैसे राजा प्रताप रुद्र ये भगवान के रथ के रस्सी को खींचते थे जगन्नाथ रथ यात्रा में, ऐसे इस तरह की सेवा करते समय हमें आसानी से पता चलता है कि मैं एक साधारण सेवक हूँ। लेकिन जो व्यक्ति की चेतना पूर्ण रूपेण भगवान के पदकमलों में समर्पित है, उस व्यक्ति को ही ऊंचा आसन दिया जाता है। प्रभुपाद जी को इतना ऊंचा आसन दिया गया है उधर, उनको क्यों दिया गया है, वो सारे दुनिया के जीवों के अपने आप को वो सेवक मानते हैं। मैं सब जीवों को भगवान से जोड़ूंगा, और उनको किसी भी जीव के साथ ईर्ष्या भावना नहीं है, सबको समदृष्टि से देखते हैं। ऐसे ऐसे एक श्लोक है ध्रुव महाराज के संबंध में, शांताः समदृशः शुद्धाः सर्वभूतानुरंजनाः यान्ति अच्युत पदम् अच्युत प्रिय बांधवाः। ऐसे एक श्लोक है, शांताः का मतलब है सब तरह के वासनाओं से उनके हृदय मुक्तता, शांताः इंद्रिय संयमता, समदृशः वो कौन बड़ा है, कौन नीचा है, कौन ऊंचा कुल का है, नीचा कुल का है, कौन धनी है, कौन अमीर है, ये गरीब है, कौन पढ़ा लिखा अनपढ़, वो सब नहीं देखते थे, सबको समदृशः ऐसे देखते थे, सब जीवराशियों को प्रेम करते थे वो। शुद्धाः उनका चित्त शुद्धता निर्मलता भगवान के नाम लेकर, सर्वभूतानुरंजनाः सब जीवों को कैसे संतुष्टि करे वो उनका मालूम था, सबके साथ ऐसे आदरपूर्वक पेश आते थे ध्रुव महाराज ऐसे। सर्वभूतानुरंजनाः यान्त्यञ्जसा अच्युत पदम, बहुत आसानी से वो भगवान की अच्युत पदम पदकमलों को प्राप्त किया उन्होंने। सर्वभूत यान्त्यञ्जसा अच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधवाः, वो भगवान के भक्तों को बहुत आदर दिया, प्रेम दिया उन्होंने, अच्युत प्रिय बांधवाः, तो भगवान के निकट पार्षदों को उन्होंने भगवान जैसे ही ट्रीटमेंट दिया उन्होंने, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह हम लोग भी ये सेवा भावना को अपनाना चाहिए अपने मन में। सेवा भावना का मतलब है, ये बहुत गहरा चीज़ है हमारे अंदर, जब सेवा वृत्ति आता है हम दूसरे लोगों को हमसे बड़ा मानते हैं, हम अपने आप को निम्न मानते हैं ऐसे। और आगे जाकर बताया गया है कि जिम्मेदार होना चाहिए एक भक्त को, जो जिम्मेदारी व्यक्ति है उनको ही लीडर बनाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर मिशन के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। एक आदर्श उदाहरण होना चाहिए उनको, सब विषय में आदर्श उदाहरण, जैसे मीटिंग में टाइम पे आना, और एक्चुअली उदाहरण जब बोलते हैं बाहर के उदाहरण भी है, जैसे संडे को मंदिर में आना, मंदिर के सेवाओं में जुड़ना, और प्रचार काम जो दिया गया है उसको गंभीरता से लेना, वो सब ठीक है। लेकिन आदर्श उदाहरण का मतलब है सदाचार में भी, हम कैसे दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं, कैसे हम हमारा बर्ताव कैसे करते हैं। शीलता का मतलब है हृदय का गुण, सदाचार का मतलब है बाहरी गुण। कभी कभी कुछ भक्त लोग दूसरे भक्तों के साथ जब पेश आते हैं उसमें उनका इंटरेक्शन ऐसे होता है, उससे नए लोगों को प्रॉब्लम होता है। उदाहरण में बताता हूँ, एक भक्त पहली बार मायापुर यात्रा में गया था, पहली यात्रा में, उधर उसने देखा कि दो भक्तों के बीच में झगड़ा देखा उसने, उसने देखा कि एक बस में, वो तो 30-40 बस था, तो एक बस का लीडर था, सब भक्त लोग बोल रहे थे बस को, ए सब बस चले गए, तुम भी चलाओ बस को अभी। लेकिन दूर से एक सीनियर भक्त कोई तो भाग कर आ रहा था, वो वाला रोको बस रोको, इसको पता नहीं चला बस को रोकना चाहिए नहीं तो चलाना चाहिए। तो उधर भी देख रहा था, इधर भी देखा, सब लोग बोल रहे हैं बस के अंदर, ए बस को अभी निकलना चाहिए, अगर सही टाइम पर निकलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा किधर जाना है हमको आगे। हाँ निकलो, तो अंत में बस ड्राइवर को बोला निकलो, वो निकल गए। तो आधा घंटा दूर में और एक पवित्र स्थान था, सब बस रुक गए उधर, ये भी रुक गया। तो वो दो सीनियर भक्त आया एक ऑटो पकड़ कर, आ पहुंचा तो ये बस के पास आ गया, वो बस लीडर को पकड़ा, वो तो जूनियर भक्त था, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुमको मालूम नहीं मैं 15 साल का भक्त हूँ इस्कॉन में, मैंने हाथ ऊपर करके बोला रोको रोको, बोला तुमने रोका क्यों नहीं। तो वो बोले कि प्रभु जी मुझे के, मैं क्या कर सकता हूँ, सब बस के अंडर, बस के अंदर के भक्त लोगों ने बोला कि बस चलाओ अभी, इसलिए हमने चला दिया। और हमारा इंस्ट्रक्शन आ गया ऊपर मैनेजर से, अभी सब बस को निकलना पड़ेगा, अभी अगर हम नहीं निकलेंगे तो मैनेजर को फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है। वो बोला ठीक है मैनेजर जो बोलना है बोला, लेकिन मैं सीनियर भक्त हूँ, तुमको रोकना था, क्यों नहीं रोका तुम, तुमने अनादर कर दिया हमको, बड़ा वैष्णव अपराध कर दिया तुमने, ऐसे बोलाओ। तो वो इस तरह वो झगड़ा को वो नया नया एक भक्त ने देखा जो पहली बार यात्रा में गया था, तो उसने अपने मन ही मन सोच लिया ये हमारा पहला और अंतिम यात्रा है, हम कभी नहीं जाएंगे यात्रा में। वो सोचा कि इस्कॉन को छोड़कर हम चले जाएंगे, सोचा ऐसे उसने। लेकिन उसी दिन दोपहर को जब प्रसाद का परोस रहे थे सब लोग, उसके पीछे एक पेड़ था, पेड़ के निकट ये भक्त अपना प्लेट ले रहा था प्रसाद, अचानक देखा वो पेड़ के निकट दोनों भक्त एक दूसरे को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। हाँ तो माफ़ी मांग रहा था ये भी, और वो भी माफ़ी मांग रहे थे, दोनों बोले कि सारी प्रभु जी, थोड़ा उस सीनियर भक्त बोला जूनियर को, मैं क्रोध से बोल दिया तुमको, तुम इसको परवाह मत करना, बड़ा मत लेना उसको, ऐसे ही सुबह तुमको डांटा, तुमने जो किया वो सही था, मैनेजर की बात मानना चाहिए तुमको, मैं तो लेट आ गया, क्योंकि सबको बोला गया कि किसी को नहाना नहीं चाहिए, लेकिन सब लोग बस में बैठ गए, ये सीनियर भक्त नहाने के लिए चले गए, गलती किसका था। हाँ तो बोला गलती तो हमारा था, आपका नहीं था, ऐसे बोला। तो जूनियर भक्त भी, तो दोनों के बीच में ये हो गया, ठीक हो गया सब। तो ये भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे सुबह दोनों झगड़ा क्या, दोपहर को दोनों आलिंगन दे रहे हैं एक दूसरे को ऐसे। हाँ तो वो इस तरह सोचा कि अभी हम यात्रा जारी रखेंगे, आते रहेंगे यात्रा में। तो भक्त बन गया। बोलने का मतलब क्या है, भक्तों के बीच में मतभेद होता है कभी, एक दूसरे के साथ सही ढंग से बर्ताव नहीं करते हैं नवसिक्य अवस्था में। तो कभी कभी आपको मैं ये केस स्टडी बताऊंगा और आपको जवाब देना। तो एक केस स्टडी बताता हूँ आपको। एक भक्त देखता है कि कोई समभक्त है उसके, लेकिन गुरुजी उनको बुलाते हैं अपने कमरे में, दो दो घंटा बात करते हैं उसके साथ, लेकिन ये देखता है कि हमको गुरुजी देखते हैं दूर से ही मुस्कुराते हैं बस, उतना ही निकट बुलाते ही नहीं है, लेकिन वो भक्त के साथ दो दो घंटा बात करते हैं गुरुजी, तो इसको मन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसको। तो ऐसे भक्त को आप क्या बोलेंगे आप?